बाबा हम सभी को स्मृतियाँ दिलाते हैं, कुछ महान स्मृतियाँ, हमारी शक्तियों की स्मृतियाँ, हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या पावर हमारे हाथ में है, सब बाबा याद दिलाते हैं। पहुंचे सवेरे चाबी याद करो, चाबी सर्व खजानों की चाबी कौन सी, एक नाम इसका है, एक का ही नाम हो, एक एक की ही याद हो, उसकी श्रेष्ठ स्मृति हो, एक। और आगे चलो, बोलो भाई अब पॉइंट सुनाओ आज की मुरली के। हाँ और अच्छी तरह बोलो, बहुत सुंदर बात थी ये। जो बच्चे याद में रहते हैं उनके सिर पर बाबा का सदा हाथ है। और सबसे बड़े भाग्य की बात, घर बैठे है क्या ऐसा, घर बैठे मिले या बाहर निकल के मिला था संध्या बहन, क्या विचार है, घर बैठे भगवान मिल जाए, कितनी नशे की बात है। और बोलो साइंस और साइलेंस, अब तो याद आ जाएगा, जब साइंस बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है, साइलेंस के बजाय और शब्द बोले बाबा ने, तो क्या आत्मिक शक्ति और परमात्मा शक्ति क्या नहीं कर सकती। आज बाबा विशेष याद दिला रहे थे, बाबा भी तुम्हारे प्यार में क्या हो जाता है, ऊपर से नीचे, निराकार से साकार, आवाज से परे वाला आवाज में, बाप पर भी अधिकार और खजानों पर भी अधिकार। तो जब ऐसा, हाँ ये बहुत विषय बात थी, बाप बाप को भी अपने पर समर्पण कराने की चाबी, सोच लो भगवान महान आत्माओं पे समर्पित होता है, समर्पित का अपना सब कुछ दे देता है, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ जी हजूर, बोलो क्या आज्ञा है, भगवान भी आके कह देता है बोलो क्या आज्ञा है, क्या सेवा है, ऐसा समर्पण हो जाता है भगवान भी किन के आगे, कौन से बच्चे, सोच लेना है किन के आगे। फिर बाबा ने कहा तो जब तुम बाप को भी ऐसा कर सकते हो तो क्या इस अधिकार से प्रकृति और परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, रियलाइज करें आप क्या कहना चाहता है भगवान, हमें क्या याद दिला रहा है वो, हमें सोच लें सभी, बहुत बड़ी चीज है ये। खुशी होनी चाहिए घर बैठे भगवान मिल गया, और एक और लाइन जोड़ी में ही, वो हम अपना हो गया, भगवान मिलना एक बार, जन्म जन्म की प्यास थी वो मिट गई, भगवान आ गए हमारे हो गए, लेकिन वो आके कहे मैं तुम्हारा हूँ, अपनापन हमारा हो जाए वो, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भगवान के इतने समीप आएंगे कि वो हमारा ही हो जाएगा। क्या सोचते थे हम सब, एक बार दर्शन हो जाए, देख लें एक बार कैसा है, दर्शन तो छोड़ो अपना ही हो गया आ गया, सर्व शक्तियों सहित सर्व खजानों सहित हमारा हो गया, उसके सारे खजाने हमारे, शक्तियों को कर्तव्य अनुसार बोलो आह्वान करें, ऑर्डर दें, ऑर्डर नहीं देते बल्कि खैर थोड़ा माताओं से पूछते हैं, ऑर्डर नहीं देते बल्कि हाँ वो दूसरी बात थी, आह्वान नहीं करते आवागमन में आ जाते हैं, ऑर्डर नहीं देते बल्कि डरते हैं सहन कर पाएंगे या नहीं क्या होगा, डरते हैं। कैसी शक्ति को ऑर्डर दें, उदाहरण दिया बाबा ने, सहन शक्ति को कहो सब कुछ सिखाता है, सहन शक्ति को कहो बोलो किसको याद है, किसको तो भूलना नहीं है, ठीक है नहीं, शक्ति का आह्वान कर लिया, सहन शक्ति का कर लिया, अब उसको ऑर्डर देना है जाओ इस कार्य को सफल करो, ये विधि है। समस्याएं आ गई, सामना करने की शक्ति को आह्वान करो यानी बुलाओ, इमर्ज करो, फिर उसे ऑर्डर दो कि समस्या को समाप्त करो जाओ, ये बहुत सुंदर विधि है खेल की तरह। ऑर्डर कौन देंगे, कौन देंगे ऑर्डर, नहीं कुछ और बोलो, कौन ऑर्डर देंगे, अधिकारी, कौन ऑर्डर देंगे, मास्टर, सर्व शक्तिवान, दो समान आज बाबा ने याद दिलाए, तुम हो मास्टर, मास्टर दूसरा भी क्रिएटर रचयिता, मास्टर सर्व शक्तिवान और मास्टर क्रिएटर रचयिता, रचने वाले हो जैसे ब्रह्मा रचने वाला है, हम उसके बच्चे भी रचने वाले हैं, मास्टर क्रिएटर हैं, क्रिएट करते हैं रचते हैं। कोई ये नहीं कहे कि हमारे घर में तो बहुत अशांति है, बाबा याद दिलाते हैं अशांति है तो तुम शांति के क्रिएटर हो, तुम शांति रख सकते हो। मेरे पास तो परिवार में ये बहुत बहुत समस्याएं हैं, तो बाबा याद दिलाते हैं तुम इन परिस्थितियों को बदल सकते हो, इन्हें बदलने की पावर तुम्हारे पास है, याद दिलाते हैं बाबा। एकाग्र नहीं होता मन, गहराई से चिंतन करें जरा, एक शक्ति है हमारी विस्तार को संकीर्ण करना, था सभी संकल्पों को समेट लेना, समा लेना और एकाग्र हो जाना, एक है समेटने की शक्ति, और विस्तार तैयार है, सब काम पूरे हो गए, चलने के लिए रेडी, लेकिन ये है एकाग्रता की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करना, ऑर्डर देंगे इस शक्ति को, आह्वान करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ये मेरी शक्ति है, अर्थात मेरे पास शक्ति है विस्तार को समेट लेने की, मेरे पास शक्ति है विस्तार को समाप्त करके एकाग्र हो जाने की, ये है आह्वान, मेरे पास है ये शक्ति, मेरी शक्ति को कहो मेरे चित्त को एकाग्र कर दो। कुमारों से बात करते हुए मधुबन वालों से यही बात सुंदर कही बाबा ने, जरा मन बुद्धि को एकाग्र करो और फिर देखो कमाल, एक लगेगी साक्षात्कार मूर्त बन जाओ। तो ये बहुत सुंदर बातें बाबा हमें याद दिलाते थे, बहुत बहुत गुह्य है शक्तियों का आह्वान करना, उन्हें ऑर्डर देना, कार्य में लगाना। ये करते नहीं है ब्राह्मण, शायद कोई भी न करता हो। शुरू कर दो जरा इसको, शक्तियों पर हमारा अधिकार। जैसे हमारे सामने 8 शक्तियाँ देव रूप में खड़ी हैं, जैसे सेना के जनरल होते हैं ना, 8 सेनापति हमारे सामने खड़े हैं और हम एक एक को कहेंगे तुम वहाँ जाओ ये काम करो, तुम वहाँ जाओ ये काम करो, तुम वहाँ जाओ ये काम करो। ये सब हमारी शक्तियाँ हैं, हमारी शक्तियाँ हैं, हमारा इन पर अधिकार है। पहले ये फीलिंग बहुत बढ़ानी पड़ेगी। हम मास्टर क्रिएटर हैं, रचने वाला रचना के अधीन नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट बात है ये, रचने वाला रचना के अधीन नहीं हो सकता। बाबा रचने वाला है। देखो बाबा इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए आया है। आया है तो कैसी दुनिया में, वो इसके अधीन नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्रिएटर इस क्रिएशन के अधीन नहीं हो सकता, वो क्रिएटर है, हम भी क्रिएटर हैं। कलयुग के वातावरण के अधीन नहीं हो सकते, हम भी उसी महान कार्य के लिए आए हैं। तो ये बहुत बड़ी स्मृति बाबा दिलाते। पहली मुरली की और भी कुछ बातें, साइंस की शक्ति चमत्कार दिखाती है, आत्मिक शक्ति परमात्मा शक्ति बढ़ाएंगे हम इसे, अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। आत्मिक शक्ति कौन सी, कौन सी आत्मिक शक्तियाँ कौन थे? नहीं, प्योरिटी की शक्ति, संकल्पों की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, योग की शक्ति, शुभ संकल्पों की भी शक्ति, विशेष रूप से साइलेंस पावर। मन साइलेंट हो जाए, मन शांत हो जाए तो मन से बहुत पावरफुल वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। मन को शांत करना हमारी बहुत श्रेष्ठ साधना है। आगे चले मुरली और थी, दीदियों से बात, दादियों से बात, क्या कहा? राजा और प्रजा की बात थी, याद करो, याद करो। हाँ पॉइंट सुनाओ। वो राजा दिखाई देते हैं, राजा और रानी में भी अंतर होगा, राजा रानी और बच्चों में भी अंतर होगा, और प्रजा की निशानी, अब बोलो बात जो बता रही थी कोई माता, अधीन होंगे वो, कोई उमंग दिलाए तो नशे में झूमेंगे, उमंग खत्म हुआ फिर सोचेंगे कोई और दिलाए, कोई दिला दे उमंग तो फिर से हम अच्छा पुरुषार्थ कर लें। पर और किसकी किसकी अधीनता होगी? माया की भी उन्हें अधीनता होगी, संस्कारों की भी अधीनता होगी, परिस्थितियों की भी अधीनता होगी। और श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो जो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग निकाल ले। माताओं पे आ रहे हैं अभी जरा, ठीक है, दीदियों से बात, फिर थी कुमारों से या माताओं से? कुमारों से थी फिर बात। बोलो कुमारों में क्या कंप्लेंट्स है? कुमारों की कंप्लेंट, साथी चाहिए, बना लो साथी, इससे अच्छा साथी चारों युगों में कोई नहीं मिलता। जो कलयुगी साथी हैं वो माताओं के, उसमें कहा गृहस्थियों के, वो क्या करते हैं? माथा खराब करने वाले। बहुत लोगों ने शादियां की हैं, बेचारे दुखी रहते हैं, ऐसी पत्नी मिली, हम तो पहले ही सुखी थे, सोचा था मदद हो जाएगी, मदद छोड़ो तो जीना ही मुश्किल हो गया। किसी को ऐसा पति मिला कि परेशान ही रहने लगे। तो कलयुग के साथी साथ नहीं निभाते, सहयोग नहीं करते। भारत में भी ये समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। अभी स्त्री पुरुष के झगड़े युवकों में, जो नए बच्चों की शादियां हो रही हैं, उनमें सभी के झगड़े बहुत हो रहे हैं। मेरे पास तो एक दो केस रोज आ ही जाते हैं, प्रैक्टिकल में भी आते हैं, नीचे ऊपर फोन भी आते हैं। अभी 2 ही साल तो शादी को हुए थे, अभी डाइवोर्स की नौबत आ गई है, क्या करें। आज भी आई है एक टीचर, लाई उसको गैंसरों में भी, कहा भी तो शादी हुई थी, बस 2-4 मास रह के मैं घर आ गई, अभी क्या करूं, वापिस जाऊं या न जाऊं, पूछ रही है सभी। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हारे पति में बहुत अहंकार है क्या? कहा बड़ा अहंकारी है। मैं कब तक सहन करूं, इसलिए घर आ गई थी, अब सोचती हूँ जीवन ऐसे तो नहीं चलेगा, घर में तो नहीं चलेगा ना, जीवन मुश्किल हो जाएगी ना, जाऊं वहाँ फिर डर लगता है, जाऊं तो कैसे सोऊंगी, सुविधा हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या इस समय भारत में भी चालू है, इसलिए अशांति बहुत बढ़ती जा रही है, और यही अशांति लोगों को फिर बाबा के पास भी ला रही है। बहुत परेशान होते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता तो दौड़े आते हैं बाबा के पास, प्रोग्राम सब देखते हैं। आजकल प्रचार काफी हो चुका है, भाई जिसको भी शांति चाहिए ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, अब ये फेमस होता जाता है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूरे शांत हुए या नहीं, ऐसा नहीं शांति मांगने वाले आपके द्वार पर आ जाएं और आप कहें थोड़ी हमें भी दे दो, आपके पास जो बची वो भी छोड़ के जाओ, कैसे काम चलेगा। तो कुमारों को बाबा को अपना साथी बनाना चाहिए, बाबा के यही सब थे, ऐसा साथी कभी नहीं मिलेगा जो सदा साथ निभाता है। देहधारी साथी साथ नहीं निभाते हैं, नहीं निभाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, थोड़े आगे हो जाओगे फिर थोड़े, साथ नहीं निभ रहा है। ये संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जाती है दुनिया में। हम सब इन सबसे जरा ऊपर उठ कर रहे हैं, सुख दें सुख लें, ये सब बातें देख कर पता चलता है कि बाबा ने हम सबको जो सुंदर बातें सिखाई हैं, वो संबंधों में मधुरता लाने के लिए कितनी जरूरी हैं। चाहे हमारे अपने संगठन हो या भाइयों के संगठन हो, बहनों के हो, सब में सफलता के लिए अहंकार नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ बहुत कठिनाइयाँ हैं संगठनों में। इसलिए जो अहंकार को त्याग दे वहाँ सुख ही सुख है। चलो माताओं को क्या कहा, माताओं की विशेष शिकायत क्या है, उनका परीक्षा कहाँ होती है, माताओं को बोलने दो, भाई भाई ना बोलो, कहाँ होती है माताओं का पेपर, मोह का। और मोह छोड़ने वाले क्या बन जाएंगे, नहीं तीव्र प्रकार के नहीं कुछ और का, नष्टो मोह क्या बन जाएंगे, नहीं विजयी रतन बन जाएंगे। याद करो विजयी रतन, मोह छूट सकता है क्या, क्या करेंगी माताएं, छूट सकता है क्या, बोलो पीछे वाली माताएं, छूट सकता है, वही तो नहीं होता। बाबा के साथ मोह रख ले तो सारी समस्या खत्म, वही तो नहीं होता। पिछली बार भी मुरली ने ऐसे बहुत सुंदर बात थी, जो परमात्मा प्यार में मगन रहते हैं, उनके वाइब्रेशन चारों ओर इतने पावरफुल फैलते हैं कि माया आना तो दूर, आंख उठा के देख भी नहीं सकती। परमात्म प्यार तो ऐसी चीज है, पर परमात्म प्यार बड़ा सूक्ष्म है ना, कैसे मोहनष्ट होगा बोलो। और माताओं को ये मोह बहुत दुख दे रहा है। ऐसी स्थिति हो गई कि बच्चों को प्यार भी नहीं कर सकते, घर से भी नहीं निकाल सकते, वो तो हो ही नहीं सकता। प्यार भी नहीं दे सकते, मोह भी नहीं छोड़ सकते, दुविधा हो गई है परिवारों में, कैसे मुक्त हो इनसे। सोचो माताएं, होना तो जरूर है, क्योंकि सब कुछ छोड़कर चलना है। अब देखो पूना के पास गांव का गांव दब गया ना, सुना माताओं ने, पूरा गांव दब गया। विनाश क्या होगा, शहर के शहर जमीन में चले जाएंगे। अब तो लोग निकालते भी है, मेहनत करते हैं, कोई मेहनत ही नहीं करेगा, सारा शहर ही चला गया, ऊपर से पानी आ गया, क्या किया जाए। ये सब हो नहीं जा रहा है, रोने वाले भी नहीं बचेंगे, किस किस को रोएंगे, आंसू भी नहीं बचेंगे, तो क्या हाल होगा जिनका बहुत मोह है, रो भी नहीं पाएंगे। ये समस्या तो यही होगी, रो नहीं पाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, जड़ बन जाएंगे एकदम, न खुशी न दुख, दोनों से परे लेकिन जड़ स्थिति आ जाएगी। कोई असर नहीं होगा अच्छे बुराई का, सदमा जिसे कहते हिंदी में, सदमा लग जाएगा डेड बिल्कुल। और जो एकदम खत्म हो जाएंगे मोहवश, वो आत्माएं भटक जाएंगी, मोह उनको ऊपर नहीं उड़ने देगा, ये सूक्ष्म रस्सियां होंगी। देखो जिससे जिसका मोह है क्या होता है, उनके वाइब्रेशन से वो, उनके वाइब्रेशन से वो जुड़े रहते हैं, वो उड़ नहीं पाएंगे। बाबा कहेगा आओ, और वो जा नहीं पाएंगे, तो उन्हें यहाँ बहुत कष्ट होगा, अति कष्ट, लंबा समय कष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय सबसे अच्छी चीज होगी तुरंत दे छोड़ देना, पुण्यों की निशानी होगी, पुण्यात्माओं की पहचान होगी। नहीं तो जैसे अभी भी हुआ, वहाँ तीन चार लोग निकले ना, कुछ समय के बाद निकले कुछ लोग। अब सोचो जो अंदर दबे हुए हैं, ये तो गांव था, थोड़ा कच्चे भी मकान होंगे, कच्चे पहाड़ गिरे, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऊपर से नीचे गिर जाएंगी, उसमें लोग दब जाएंगे, तब क्या करेंगे वो अंदर। सोचो अंदर दब गए, कोई निकालने वाला नहीं है, अंधेरी कोठरी में पड़े हैं, प्यास लगी है, पानी नहीं है, सिर फूट गया है, दवाई नहीं है, सबसे कड़ी सजाएं होंगी वो मनुष्यों के लिए। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, ये इस तरह लोगों के हिसाब किताब सुख तो कराएगी, रहने का सुख तो थोड़े ही मिलेगा, बाकी हिसाब किताब ज्यादा सुख तो कराएगी। हम सब क्या करेंगे तब, कभी पूना वालों को सकाश दे दो, यहीं से सब जल्दी ही शांत होकर पुनर्जन्म ले ले, क्योंकि ऐसे में आत्माओं को पुनर्जन्म नहीं मिलता, भटकती रहेगी ना वही, न जाने कैसी किसकी मृत्यु हुई है, कितनी देर में हुई है, दो दो दिन तड़पते रहे हैं, कितना कष्ट वहां अंदर में हुआ है, वो सब लेकर आत्मा साथ निकलेगी शरीर से और कष्ट पाती रहेगी। हम सभी कल सवेरे सभी कर देना उन सभी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन, ताकि उनका चित शांत हो जाए और जल्दी से उन्हें पुनर्जन्म मिल जाए। ये हम सब का बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य है, ये सबको कर देना है, एक ही बार करने से सबका उनका कल्याण हो जाएगा। पसंद है, तो माताओं को बाबा ने कहा मोह का पेपर होता है, पेपर नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे ना। एक एग्जाम पूरा होता है तो क्लास चेंज हो जाती है, खुशी तो तभी होती है ना। और कोई बच्चा 5 साल तक 10वीं क्लास में ही रहे, 3 साल तक ही रहते हैं तो सीनियर हो जाता है तो कितना उसका बुरा हाल हो जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। तो परीक्षा आना माना आगे बढ़ना, इसलिए परीक्षाओं को सभी इसी नजर से देखेंगे कि परीक्षाएं हमें परेशान करने नहीं आई, आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। हमें निरंतर आगे बढ़ते चलना है, परिस्थितियां हमें पावरफुल बनाएंगी, ये पक्का कर दें सभी। अनुभव भी देती है ना परिस्थितियां, तो परिस्थितियां हमें पावरफुल बनाएंगी। मोह को छोड़ने की बात कर रहे थे, मुझे एक बात भूल गई थी, वो पूरा कर दें। सभी माताएं भाई भी, लेकिन माताएं पहले, रोज अपने घर में बैठ कर शांत में बैठो, सारे परिवार को देखो इस दृष्टि से, ये सब आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे घर में ये सब आत्माएं आई हैं, बहुत अच्छी हैं, इनमें से कई देव कुल की होगी। अब हम सब को वापिस घर चलना है, 5000 साल का खेल पूरा हुआ। संकल्प करो सबको देखकर, अब सब चलेंगे या कोई बचेगा, खेल ही पूरा होने वाला है, सब घर चलेंगे। 2 बार कर लो जरा, सारे दिन में 2 बार बैठकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखकर अच्छा चिंतन कर लो, मोहनस्त हो जाएगा। घर में वाइब्रेशन, सूरत की प्रभा माता भाई हो तो उठ जाओ, जाना भाई बुलावा आया है, सूरत की प्रभा है नहीं भाई, यहाँ तो नहीं है। तो सभी अपने मोह को नष्ट करने के लिए ये प्रैक्टिस करें, और जो बिल्कुल नष्ट मोह बनना चाहते हैं वो एक और प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं जो समर्पित हो गए वो नष्ट मोह बन गए, किस किस से मोह रह सकता है, हैं? नहीं इनको बच्चे नहीं है, ये जो समर्पित पाले बैठे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो समर्पित हो गए किससे मोह रह सकता है बताओ, मोबाइल से। जितना अच्छा मोबाइल होगा उतना मोह, लैपटॉप से, जो भी चीजें मनुष्य के पास होती हैं, पहनने के कपड़े ही हों, धोबी घाट से नहाए 2-4 दिन तो संकल्प तो चलता है ना। हमारे यहाँ बहुत हो रहा था, सबके खो रहे, आगे क्लास में कहना पड़ा भाई सबके कपड़े खो रहे, दूसरों के पास जा रहे हो तो वापिस करो, चले जाते हैं ना छांटने में। हमें अपनी सब वस्तुओं को देखते हुए ये भान बढ़ाना है, ये सब विनाशी है, केवल यूज करने के लिए है। चाहिए तो चाहिए, तो बरसात हो रहा है तो छाता चाहिए, चाहिए सब कुछ, शरीर है जीवन है तो उसमें सब कुछ चाहिए, लेकिन ये सब विनाशी है, छोड़ के चलना है। जिस दिन छोड़ने को कहा जाए छोड़ के चलो, लो सब हम चले, हो सकता है या नहीं, ऐसी प्रैक्टिस करके चलना है आगे चलो। और किसी बात थे युगलों से, करे युगलों की बात थोड़ी भारी थी, कंपेनियन नहीं बनाओ सहयोगी बनाओ। देखो स्त्री पुरुष का ऐसा नाता है कि उन्हें एक दूसरे के मित्र बनकर रहना चाहिए, सहयोगी। आजकल मित्र नहीं बनते, एक दो को टेंशन देने वाले, एक दो को परेशान करने वाले बन जाते हैं। बनना चाहिए सच्चे मित्र, ये नहीं भाई बनते हैं, माताएं भी बन जाती हैं, बनते हैं या नहीं। सच्चे मित्र बनना चाहिए एक दूसरे के, और कंपेनियन होता है सच्चा साथी, उसे बाबा को बनाओ। अकेले हो जाओ और फिर कंपेनियन बनाओ बाबा को, बाकी जो युगल है वो सहयोगी, साथ चलने वाले, साथ तो चलेंगे ना। संसार का नियम ही ये है, परिवार सब साथ चलेगा, परिवारों में सब एक दूसरे के सहयोगी बन जाएं, मित्र बन जाएं, यही कला सीखनी सिखानी है। इसलिए जहाँ गड़बड़ हो गई वहाँ परिवारों में अशांति हो गई है। तो माताएं भी ध्यान दें, सबको यही सोचना चाहिए, मैं अपने परिवार में शांति स्थापित करने के लिए मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकती हूँ। सब सोचें, अंगुली दूसरों की ओर नहीं उठाएंगे। इतने घर में अशांति की है, ये न हो तो सब कुछ ठीक हो जाए, पर वो हो क्यों ना, वो तो है ना। और जिसके लिए ज्यादा सोचेंगे पता नहीं ये कब मरेगी, हो उतना ही लंबी आयु जीती है। कि तुम दुआएं देते रहो मांगने की, ये सब दुआएं हमारी आयु को बढ़ा रही हैं। प्राय देखने में आता है जिसे सब छुटकारा पाना चाहते हैं वो सबसे बाद में जाते हैं, सबसे हिसाब किताब लेकर, क्योंकि उनका हिसाब किताब सबसे है ना। और क्या कहा बाबा ने, आगे चलो पांडवों से, मधुबन वालों से। पांडवों का गायन विजय, साथी साथी स्वयं भगवान, उनकी विजय का आधार ही था साथी, विजय का कारण ही साथी था। और सखा सखी बाल बाल, तो उसके साथ हम रहे। एक मुरली बाबा की अव्यक्त चली है, चिल्ड्रेन के साथ कौन पढ़ेंगे कौन खेलेंगे, याद है अव्यक्त मुरली है, पढ़ेंगे कौन श्री कृष्ण के साथ, वो राजकुमार है, राजकुमार के साथ सब तो नहीं पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे कौन पढ़ेंगे। जो यहाँ पढ़ाई में ब्रह्मा बाबा जैसे रहे, जो बात समान हुए पढ़ाई में, वो साथ पढ़ेंगे। राज कौन करेंगे साथ में, जिन्होंने संस्कार मिलन की राज की है, अर्थात जिनके संस्कार उनके जैसे बन गए हैं, वो साथ राज करेंगे। तो बड़े सुंदर रहस्य हैं, जैसे आज बाबा ने कहा कि प्रजा में, बच्चों में, पुरुष और स्त्री यानी राजा और रानी में भी वो फर्स्ट नंबर है, वो सेकंड नंबर है, अंतर होगा। बाबा ने कहा वो ध्यान करना। अब आप देख ले, मामा और बाबा, नारायण और लक्ष्मी, वैसे तो दोनों ही समान हैं, लेकिन अंतर तो है। बाबा की रौनक अपनी थी तो मामा की रौनक अपनी थी। मामा ज्ञान सुनाने में बहुत रौनक रखती थी, पर बाबा प्रशासन में, मुरली सुनाने में, बाबा का माध्यम बनने में, बच्चों को प्यार देने में, बड़प्पन में वो बहुत आगे थे। दोनों में थोड़ा सा अंतर तो दिखाई देता था, लेकिन वो अंतर ऐसा नहीं था जिसको कोई नोट कर सके, है ना, वन और टू, थोड़ा सा अंतर। उनके बच्चों में तो बच्चे भी तो अपने को मालिक समझेंगे ना, जो जिस राजवंश के राजकुमार होंगे उन्हें बचपन से ही वैसा ही नशा होगा, हम मालिक हैं, हम इनके वंशज हैं, तो उनके संस्कारों में भी बहुत रॉयल्टी होगी। यहाँ यज्ञ से बहुत अपनापन होगा, विशेष रूप से यज्ञ से अपनापन, यज्ञ की सेवाओं से बहुत अपनापन। काम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना सोचो। घरों में माताएं बहुत काम करें, बोलती हैं क्या, बहुत काम है मुझे तो, बहुत काम है, अपना घर है ना, वो तो हमें करना ही है, जिम्मेदारी है। ये तब बोला जाता है जब दो हैं, वो नहीं कर रही, मैं सारा कर रही हूँ, वहाँ झंझट होता है। अगर अकेली है तो डबल काम करेगी और संकल्प नहीं उठेगा कि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, और दो हो गए तो थकान होने लगेगी। देखा, वो बैठी टीवी देख रही है, मैं काम कर रही हूँ, थक गए सोचते। और जो केवल ड्यूटी निभाते हैं वो क्या बनेंगे बाबा, हम बताते हैं बाबा इसका उत्तर। जो केवल ड्यूटी निभाते हैं, भाई मेरी तो इतनी ड्यूटी है, मुझे याद आ गई एक कहानी। यज्ञ में जब हम आए तो एक भाई था, तो उसकी ड्यूटी थी, सबकी ड्यूटी बहुत सारी होती थी, तो उसकी ड्यूटी थी एक टाइम आटा बनाना। तो उसका क्या नियम था कि मैं तो 3.5 किलो ही आटा बनाऊंगा, अब ये पार्टी ज्यादा आ गई मैं तो नहीं बनाऊंगा, मेरी ड्यूटी तो 3.5 किलो ही बनाने की है, मुझे याद रहती है दिन। अब भी मैं उसे देखता हूँ, वो यज्ञ में नहीं आता है, मैंने कहा देखो ये बेचारा अगर यज्ञ की सेवा करता तो आज कितना अच्छा होता, जो दुनिया में है कितना अच्छा होता है ये। उसकी ये बात मुझे याद आती है, फिर मैंने बोल लाडी वो कहा छोड़ो इसको, आटा बनाने में कितनी देर लगती है, इसको कहो तुम और सेवा कर लो, मैं ही बना देता हूँ। फिर मैंने बनाना शुरू किया, फिर और आगे बनाने वाले, मैं भी शायद 5-7 दिन ही बनाया होगा, फिर बहुत आगे बनाने वाले वो बनाने लगे। तो ये कार्य हमारा अपना है, यज्ञ में अपनापन, अपने पन से कार्य करना, इसके बहुत नंबर हैं। ड्यूटी कौन करते हैं? हाँ, तो बाबा ये कहते थे जो केवल ड्यूटी करते हैं वो नौकर बनने वाले हैं, जो अपना समझते हैं यज्ञ को। पहले तो हमारे यज्ञ में सब लोग सब काम करते थे ना, सब्जी का ट्रक आ गया तो जो भी भाई इधर उधर है सब आके उसको खाली कर देते थे, अनाज का ट्रक आ गया सब को दादी आ जाती थी, सब सीटियां बजाई जाती थी, सीटी बजी सब आ गए ट्रक खाली कर लो भाई, ऐसे ही चलता था। मुझे याद है एक बार 100 गेहूं की बोरी थी, उन्हें धोना था, बाबा राम होंगे तब, शांति स्तंभ में धोना था, तो मजदूरों से पूछा कि भाई इनको इस स्टोर से यहाँ तक लाना है शांति स्तंभ तक, तो उन्होंने मांगे 25 पैसे एक बोरी के, उन दिनों 25 पैसे की कीमत थी, एक बोरी उठाने के 4 आने, 100 बोरी उठाने के 25 रुपए, 25 रुपए यज्ञ में बड़े कीमती थे तब। तो दादी ने कहा ये 25 रुपए मांग रहे हैं, तो फिर प्रोग्राम बना, फंड उठाएंगे सारे और उसके बदले में सबको देसी घी का हलवा खिलाया जाएगा, मुझे याद रहता है। तो सब पांडवों ने वो बोरी शोर से शांति स्तंभ पे लाके डाल दी और हमने बनाया देसी घी का हलवा, और गरम गरम दादी ने ये बहुत था वही बना और लाओ गरम गरम, हम दादी को भर के दे रहे कटोरी में, दादी सबको दे रही है, उन सबको हलवा खिलाया, 25-30 होंगे सब। हाँ शांति स्तंभ स्टोर के आगे, हाँ तो इतना धोया तब हमने पहली बार देखा कि जो गेहूँ हम खाते हैं उसमें मिट्टी कितनी होती है। जब गेहूँ धोया गया तो जो पानी बहा वो ऐसा था जैसे गंदा नाला बह रहा है पानी का, बरसात का गंदा मिट्टी जम गई नीचे, हमने सोचा इतनी मिट्टी हम सब खाते रहते हैं गेहूँ धोए। तो यज्ञ में अपने पन से सेवा करना, लकड़ी कितनी उठाते थे याद है, जो पुराने लाइन लगा देते थे भाइयों की, लकड़ी दूर पड़ी है किचन तक ले जानी है, लाइन लग गई एक दो को पास करते जा रहे, बड़ी बड़ी लकड़ी होती थी, कुछ गंदी नहीं भारी भारी, 10 किलो की भी एक, 15 किलो की भी एक, उसको उठा के ले जा रहे किचन में डाल रहे, ये भी एक विशेष सेवा थी। ड्यूटी लग जाती थी भाई मुरली के बाद सबको लकड़ी डालनी है नाश्ता बाद में, सब कोई कहीं भी सेवा कर रहा है, सब आके किचन में लकड़ी भरेंगे फिर नाश्ते पे जाएंगे। तो मिलजुल के सेवा करते थे ना, तो रौनक बहुत ज्यादा थी। ये ड्यूटी का बंटवारा बिल्कुल नहीं था, ये है अपनापन, ये है मालिकपन। तो जो भगवान के घर को अपना समझते हैं वो मालिक बन जाएंगे, बाबा भी उन्हें अपना समझेगा, फेथफुल बच्चे हो गए ना बाबा के। और जो यज्ञ को अपना नहीं समझते, बाबा भी उन्हें अपना नहीं समझेगा और वो मालिक भी कभी नहीं बनेंगे। इस यज्ञ से पूरा नाता है भविष्य संसार का। यज्ञ ही तो मॉडल है ना उस दुनिया का, तो हम इस मॉडल में रहते हैं। हम सोच रहे आज की मुरली से, मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आज की बात, जो मैंने कई बार याद की, कि तुम अधिकार से प्रकृति को और परिस्थितियों को बदल सकते हो। प्रकृति ये शरीर भी हमारा, तो इस पर बहुत अच्छा चिंतन सभी करेंगे। आज की मुरली ऐसी है जिसे थोड़ा सुनना पड़ना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाती हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। हम हार मानकर दूसरों की ओर न देखें प्यासी नजरों से, शक्तियाँ हमारे पास हैं, उनको हम ऑर्डर दें। शक्तियाँ हमारी हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। और वो बात भी बहुत सुंदर, जो बाबा की याद में रहते हैं, बाबा का हाथ अगर ये याद रखें, तो केवल याद नहीं है, केवल योग नहीं है, भगवान का हाथ सिर पे है। तो चलो ऐसे ही योग करेंगे अब, बाबा का हाथ सिर पे।